ये तो पूरे सबक का थीम पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ। अब अगला हिस्सा आप अगर इन आयतों का देखें तो उसमें कुछ अहकामात है जिनका ताल्लुक इंसानी मामलात से। और अभी दरख्त वाली मिसाल से आपको अच्छी तरह पता चल गया कि कुछ चीज़ें दरख्त के तने में हैं, अकायद हैं। पूरे कुरान में चार चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी, जिसमें से अब इस वक्त हम जो हैं वो मामलात वाली चीज़ यानी शाखों को पढ़ने लगे हैं। क्या है आयत नंबर देखिए 178, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। किसको पुकारा है? जिसने ईमान कबूल करने का दावा किया। असल ईमान कबूल करने के बाद की जिंदगी है। ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से खत्म नहीं होता, शुरू होता है। कुछ करना है ना, जैसे अब कहीं जॉब के लिए ऑफर ले, फिर जब जॉब एक्सेप्ट हो जाती है तो अगले दिन से तो वो कहते हैं अब ये करो वो ना करो। अगर कलमा पढ़ के जाके घर में सो जाना है तो ये तो वो एम्प्लॉय हो गया कि जो जॉब लेटर साइन सारे एग्रीमेंट करके अगले दिन जॉब पे ना जाए। आज हमने ये सोचा कि बस मुसलमान बन जाओ तो जन्नत मिलेगी, नहीं, मुसलमान बन के ट्रैक सीधा हो गया, अब काम करो। करना क्या? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, तुम पर फर्ज कर दिया गया क़िसास। क्या है वो? आयत का खुलासा ले लें फिर मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताऊंगी। फिल कत्ल, मकतूलों के बारे में, यानी जब कोई किसी को कत्ल कर दे तो उसके बदले में तुम क्या कर सकते हो, अब एक सवाल पैदा होता है। और यहाँ से फिर इन आयतों को पारे की पहली आयत से जोड़िएगा कि अल्लाह ताला ने सयकूलु सुफहाउ मिनन नास में आगे जो बात की थी, कजालिक वजअलनाकुम उम्मतन वसता, तो मुसलमानों को उम्मत वसत बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये लैसल बिर्रा वाली आयत उसका खुलासा था। इस आयत का नाम भी आयते बिर है, ये मैंने शुरू में शायद जिक्र नहीं किया तो नोट कर लें। यहां से आगे आप पारे के आखिर तक आपको एकसामे बिर मिलेंगी, नेकी के मुख्तलिफ शेड्स। क्या नेकी है? कुछ नेकियां अल्लाह ताला से ताल्लुक की हैं, कुछ नेकियां इन बंदों के साथ है। इसी में से एक उस दौर की जो आदत थी उसको अल्लाह ताला ने यहाँ पेश किया। होता क्या था कि लोग जब कोई एक मर जाता था तो उसके बदले में, एक के बदले में बहुत सारों को मार देते थे। आप इन आयतों को पढ़ते हुए आप जहन में वही माहौल रखें जहां ये कुरान पाक नाजिल हो रहा था। इस्लाम बिल्कुल, जिसको आप कहिए कि वो बदल चुका था। अरब लोग इतने लड़ाके हो चुके थे उस दौर में, क्योंकि इस्लाम नहीं था उनके पास अब, कि एक बंदा मरता था, किसी का कोई मार देता था तो उसके बदले में कबीलों के कबीले मार देते थे। कोई एक आजाद मरता था उसके बदले में उसके गुलामों को जाके मार आते थे। कोई एक मर्द मरता था उसके एक बाद जाके औरतों की औरतों को मार देते थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं मुसलमानों तुमने ऐसा नहीं करना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, तुम पर लाजिम कर दिया गया है। क्या? अल-क़िसासु फिल क़त्ल, मक़तूलों का बदला लेना। ये जो लफ्ज़ है ना कत्ला, ये कतील की जमा है। यहाँ इससे मानिए मकतूल, लिख लें, जो कत्ल किया गया यानी मर्डर्ड, जिसका मर्डर हो गया। कुतिबा के बाद अला आ गया, इससे मुराद फर्ज होना, लिखने के लिए आगे आगे ये बात फर्ज कर दिया गया कि जब कोई किसी को कत्ल करे तो तुम उसका बदला लो। कैसे लो? अब आगे देखिएगा इसकी शरायत। अल हुर्रु बिल हुर, नंबर एक, आजाद शख्स किसी को मार दे तो उसके बदले में उसी आजाद को मारना है। इसके आगे लिख ले कि दौरे जाहिलियत में क्या होता था कि एक मालिक आजाद शख्स किसी को कत्ल कर रहा था, जब उस शख्स के घर वाले उससे बदला मांगते तो कहते मेरे गुलाम को मार दो उसके बदले में। यानी आजाद शख्स के जुर्म में मुलाजिम गुलाम छोटी जात वाला वो मार दिया जाता, तो ये जुल्म था ना, जिसको उर्दू में आप कहते हैं करे कोई और भरे कोई। इस्लाम ने रोक दिया, नहीं, अगर आजाद ने किसी को मारा तो बदले में उस आजाद को मारा जाएगा। वल आबदु बिल अब्द, हाँ, किसी के गुलाम ने किसी को कत्ल किया तो बदले में वो ही गुलाम मारा जाएगा, कोई दूसरा नहीं। वल उनसा बिल उनसा, औरत कत्ल करेगी तो औरत के बदले में औरत कत्ल की जाएगी। देखिए यहाँ ये नहीं मतलब कि आपके कबीले की एक औरत मारी गई तो आप दूसरे कबीले की किसी और औरत को मार दें। मुराद क्या? जिस औरत ने मारा है वही औरत मारी जाएगी। सारी बातों का खुलासा क्या कि जो किसी को मारेगा बदले में बस वही मारा जाएगा, उसके खानदान का एक या ज्यादा लोग नहीं मारे जाएंगे, उसके साथ यही मामला होगा। ये तो है कानून, इंसाफ है कि नहीं भाई? जो मारते उसको मारोगे ना, ये फर्स्ट सूरत है। कसास का पहला कानून क्या है कि जो शख्स किसी को मारे हुकूमत तक मामला चला जाए, इस्लामी हुकूमत थी, इस्लाम का निज़ाम था, पता चल गया कि मिसाल है कि ए ने बी को कत्ल कर दिया और ये मुकदमा गवर्नमेंट तक पहुंच गया, तो गवर्नमेंट को हक है कि वो उस ए को कत्ल करने का हुक्म दे देगी। इतनी बात वाज़ है, ये फर्स्ट सूरत है, उसको बात दो, जिस तरीके से उसने मारा उसी से मारा जाएगा, ठीक है, ज्यादती नहीं करनी। दूसरी सूरत क्या है, फमन उफिया लहू मिन अखीही शय्युन, फिर जिसको माफ कर दी जाए कोई चीज उसके भाई की जानिब से, यहां लिखिए अखी ही से मुराद क्या है, मकतूल के वोरसा, बड़ी बात है। पहली सूरत है कि जिसने मारा बदले में उसको भी मार दिया जाए, लेकिन दूसरी सूरत है कि घर वालों में कोई कहता है कि मैं इसको माफ करता हूं, कोई एक ही कह देता है, चार बेटे थे मरने वाले के, कोई एक बेटा कहता है कि मैं कातिल को माफ कर देता हूं, तो अल्लाह कहता है कि फत्तिबाउम बिल मारूफ, फिर तुम उसको माफ कर दो। ये दूसरी चीज आ गई, पहली चीज क्या है, कत्ल के बदले कत्ल, दूसरी क्या आ गई, कत्ल के बदले में माफी, कोई एक वारिस भी माफ कर देगा ना तो माफी हो गई, दूसरे फिर नहीं बोल सकते, ठीक है, ये दूसरी सूरत हो गई। तीसरी सूरत, वह अदा निलही बेहसान, या दियत दे दो उसकी एहसान के साथ। दियत क्या होती है, इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्लड मनी। शुरू से रिवाज चलता आ रहा था अरब माशरे में कि जब कोई एक शख्स मर जाता था किसी दूसरे के हाथों, तो मरने वाले को 100 ऊंटों की कीमत उसके घर वालों को दे देते थे, ये सोच के कि देखो हमारा तो मर गया, अब तुम्हारा भी हम मार लेंगे, हमें क्या मिला, हाँ? पहले एक के बच्चे यतीम हुए, अब दूसरे के होंगे, तो जिसने मारा है ना कातिल, वो कहता है अच्छा मैं तुम्हें 100 ऊंटों की कीमत दे देता हूँ, और आपको पता है कि एक ऊंट आज भी लाखों में है, ठीक है, तो इतनी हैंडफुल मनी हो जाती थी कि फिर वो बेवा औरत और यतीम बच्चों के लिए एक बड़ा अच्छा सिलसिला शुरू हो जाता था। अल्लाह ताला ने ये बात करके आसानी कर दी और साथ ही कहा ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम, ये तुम्हारे रब की तरफ से कमी है, वह रहमा, और उसकी रहमत है। कैसे कमी है, अब नोट कीजिए, इस्लाम से पहले दो मारूफ मजहब थे दुनिया में, यहूदियत और ईसाइत। ज्यूज़ में क्या था, कत्ल के बदले कत्ल या दियत, माफी नहीं थी, ठीक है। क्रिश्चियनिटी में क्या था, कत्ल का बदला कत्ल या फिर माफी, दोनों में झोल है ना। इस्लाम आज तीन ऑप्शंस देता है, आज अगर इस्लाम आता है दुनिया में तो गवर्नमेंट को तीन सहूलतें मौजूद है, नंबर एक कत्ल के बदले कत्ल, खत्म, बात खत्म, फिर उसके बाद कोई कुछ नहीं करेगा। दूसरी सूरत है कि कत्ल ना करो, 100 ऊंटों की कीमत घर वालों को दिला दो, कुछ मदद हो जाएगी। तीसरी सूरत है घर वालों में से कोई कहता है हमें कुछ नहीं चाहिए, हम माफ करते हैं, तो ये उसके लिए रहमत है। अल्लाह ताला ने इतने खूबसूरत तरीके से ये सजाएं मुकर्रर की कि कत्ल का सिलसिला रुक गया। जब किसी को पता है कि मैं मारूंगा तो मैं मारा जाऊंगा, तो क्या वो मारेगा लोगों को, इस पे आप जाके रिपोर्ट्स देखिए। किसी हद तक आज सऊदी अरब में आपको इस्लाम का निज़ाम नाफिस दिखता है, पूरे साल में 10-15 कत्ल, और इसके बरक्स आज वेस्टर्न कंट्री जहाँ इतने रिसोर्सेज हैं, एक साल में कत्ल होने वालों की लिस्टें, अब मैंने पिछले साल में पूरी लिस्टें दी हुई हैं, अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान, इंडिया, किस मुल्क में एक साल में रिकॉर्ड पे कितने कत्ल आए, आप पढ़ के देखें। लोगों को सिर्फ अल्लाह का खौफ रोकता है, अल्लाह का कानून, पकड़ का डर रोकता है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये सब कुछ दे के मैं तुम्हें ऑप्शंस दे रहा हूँ कि तुम ये सब समझ जाओ। हाँ, फमने तदाबाद जालिका, फिर इसके बाद भी अगर किसी ने ज्यादती की तो फलहु अज़ाबुन अलीम, फिर दर्दनाक अज़ाब है, यानी इन तीनों में से एक भी ऑप्शन ना की, बल्कि कत्ल भी कर दिया, पैसे भी मांग लिए, हाँ, या पहले माफ कर दिया बाद में दियत ले ली, या एक के बदले में 10 को मार दिया। आज भी दुनिया में आप देखिए ये जुल्म है, कबायली निज़ाम में कोई किसी कबीले का एक मर जाता है ना, तो उसके बदले में जाके उसके 10-10 को मार देते हैं, नस्लों तक कत्ल का सिलसिला, कई गांव में आपने सुना होगा, कोई एक मार दे कई नस्लें उनकी मारते रहते हैं, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। और साथ ही का वलकुम फिल किसास हयातुन, और तुम्हारे लिए तो किसास में जिंदगी है, सिर्फ इतना जुमला हाईलाइट कर लें, ये अरब की बलागत का वो जुमला है कि दुनिया की कोई जुबान इसका मुकाबला नहीं कर सकती, कि इस कसास के कानून को दुनिया में लागू कर दो, फिर देखो जिंदगी कैसी होती है। आज कुछ लोग दूर से जो इस्लाम पे बातें करते हैं, प्रोपेगंडा करते हैं, कहते हैं इस्लामी सजाएं बड़ी सख्त हैं, मुस्लिम बड़े टेररिस्ट होते हैं, इस्लाम में बड़ी सख्ती है। वजह क्या है कि ये कत्ल के बदले में कहते हैं मार दो। आज भी इस दुनिया के कई मुल्कों में, एक को तो मैं भी नाम जानती हूँ कि वहाँ डेथ पेनल्टी नहीं है, नॉर्वे में कत्ल के बदले में कत्ल नहीं है। 2 साल पहले आपने सुना होगा कि एक शख्स ने कितने बच्चों को मार दिया, आज भी उसके पास डेथ पेनल्टी नहीं है। उनके कानून में किसी को मारना ही नहीं, वो कहते हैं ये जुल्म है, एक ने तो मारा है, अब दूसरे को हम मार दें। लेकिन अल्लाह कह रहे हैं कि मारने वाले को मारोगे तो अगली दफा लोग दूसरों को मारने से रुकेंगे ना। सीधी सी बात है, सजा का डर बंदे को रोक लेता है। और कहा कि या उलिल अलबाब, ए अकल वालों, अकल से सोचो, होश से सोचोगे तो अल्लाह के बनाए हुए कवानीन खूबसूरत हैं, तुम इन पे अमल करो, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बचो। आप देखिए कि अल्लाह ताला की जो तरफदारी है ना, वफ़ो दरगुजर पे, माफ़ी कर दो, कोई बात नहीं, तुम माफ़ करोगे तुम्हें अगला माफ़ कर देगा। तो इस्लाम मौके के मुनासिब से हालात के ऊपर बात करता है। कुछ आदि मुजरिम होते हैं, अब एक शख्स था चंद साल पहले, आपने खबर सुनी होगी अखबारों में, उसने 100 बच्चों को कत्ल कर दिया। अब 100 माओं की गोद वीरान हुई, आप उसको कि नहीं 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 इस बेचारे को क्यों मारे, तो वो 101 कत्ल कर देगा, 102 हो जाएंगे, राइट? नशा होता है ना। तो देखा जाएगा कि कौन आदि मुजरिम है, कौन डकैतियां करता है, कौन चोरियां करता है, और कौन किसी से कत्ले खता हो गया। आगे आप पढ़ेंगे सूरह निसा में कत्ले खता की बातें हैं, सूरह मायदा में डकैती की सजाएं हैं। तो कुरान पढ़ते जाएं, आपके दिल के दरवाजे भी और जहन के खुलते जाएंगे कि अल्लाह का कानून कितने खूबसूरत असूल देता है। अब ये कानून, ये मौजू एक ऐसा मौजू है कि बराह रास्त इस वक्त हमारा इसके साथ कोई इतना अमली ताल्लुक नहीं, अल्लाह ना करे कि हम में से कोई किसी को कत्ल करे और कराए, लेकिन इसकी डिटेल्स दोबारा सूरत निसा में आयतें आएंगी, वहाँ होंगी। बस आज के सबक में से मेरे और आपके लिए इन आयतों की रोशनी में इतना है कि इस्लाम ने किसी के कत्ल होने की सूरत में 3 ऑप्शंस दी हैं। कातिल को कत्ल कर दो, उसको घर वालों में कोई एक माफ़ कर दे तो माफ़ कर दो, या मकतूल के घर वालों को 100 ऊँटों की कीमत दे दो, या बाहमी रजामंदी पे कुछ भी कम बेश पे कर दो तो बराबर है। और यकीनन ये मामला अदल और इंसाफ वाला है। यहाँ से ये सीखिए कि इस्लाम छोटी छोटी बातों पे गाइड करता है, ये नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी से कानून बना लें। अब आखिरी टॉपिक है आज के सबक का, जिसमें अल्लाह ताला ने हम सबको जीने के साथ साथ मरने के तरीके भी सिखाए हैं। पहले तो इस आयत की रोशनी में ये जुमला सुने कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है, दीन है, कि जो सिर्फ जिंदगी में पेश आने वाली चीज़ों पर गाइड नहीं करता, डेथ बेड पे भी क्या करना है और क्या नहीं करना वो सिखाता है। अब इस अगली आयत, आयत 180 से 182 सारी इकट्ठी हैं, इसके अंदर डेथ बेड पे एक शख्स है, इमेजिनेशन मिलाएं कोई भी मर रहा है उसके साथ क्या मामला है, वो क्या कर सकता है अपने बारे में, आइए देखते हैं। कुतिबा अलैकुम, फ़र्ज़ किया गया तुम पे, ठीक है, कुतिबा के बाद अला आ गया तो फ़र्ज़ का मानी हुआ। इज़ा हैदरा अहदकुमुल मौत, जब तुम में से किसी एक को मौत आ जाए, यानी मौत के आसार शुरू हो जाए, मुराजिया लग रहा है कि अब मौत करीब है, और इन तरह का खैरा, शर्त क्या है कि वो खैर छोड़ रहा है, यहाँ खैर से मुराद माल है। खैर का लफ्ज़ अरबी जुबान में माल के लिए भी आता है और भलाई के लिए भी आता है। मुराद यह है कि एक ऐसा शख्स है जिसके पास माल और दौलत है और उसकी मौत का वक्त आ गया है, वो क्या करे। तो फरमाया अल वसीयतु, वसीयत करना है। वसीयत कहते हैं अहम नसीहत को, अमूमन मौत के वक्त जो बात कही जाती है उसको वसीयत कहा जाता है। तो कहा कि वो वसीयत कर दे किसके लिए, लिल वालिदैन, कि मेरे माँ बाप को मेरी जायदाद में से हिस्सा दे दो, वल अकरबीन, और रिश्तेदारों को, कैसे, बिल मारूफ, मारूफ तरीके से, हक्कन अलल मुत्तकीन। क्यों है ये बात, क्योंकि ये मुत्तकियों का एक दूसरे पर हक है। लिख लें कि ये आयत आज मनसूख है। जब इस्लाम आया तो भी कवानीन साथ साथ बन रहे थे ना, मरने वाले की जायदाद के साथ क्या किया जाए, आज भी ये क्वेश्चन है। और वेस्टर्न कंट्रीज में रहते हुए आपको बहुत अच्छी तरह पता है, अमेरिका का मुझे याद है कि अगर कोई मर जाए और कुछ ना कह के जाए, उसके बच्चे कुछ नहीं तो सारा माल गवर्नमेंट को मिल जाता है, या बीवी ले जाती है, मुख्तलिफ है ना, एनमी और एमनी और पता नहीं क्या क्या कहानी है। इस्लाम क्या कहता है, ये बीच का है, जैसे रिवोल्यूशनरी दौर है, अभी कानून कुछ नहीं था। जब कोई मरता था ना, पांचवें पारे में बहुत डिटेल्स आएंगी, वहद मुकाम है जहां विरासत को हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, उसी के साथ वसीयत को भी पढ़ेंगे। बस यहाँ इतना समझ लें कि इस्लाम से पहले जब कोई मरता था ना, तो लोटी पड़ जाती थी, अपनी जुबान में आप कह रहे हैं लूट मार, जिसके हाथ जो लगता था ले जाते थे। एक चादर पकड़ते थे ऐसे, कपड़ा पकड़ के ना, तो यूं उछालते थे इस तरह से। वो चादर उस बेवा के सर पे जिसकी पड़ती, बहुत सारे लोग फेंकते थे खानदान के, जिस मर्द की चादर उस औरत के सर पे गिर जाती थी ना, कहते थे अब ये मर्द उसका वाली वारस है, उससे निकाह करे, उसको महरूम कर दे, उसको बेदखल कर दे, उससे अपने बेटे की शादी कर दे, बच्चे की कर दे, जो मर्जी करे। वो औरत बोल नहीं सकती थी, इतना जुल्म था। छोटे बच्चे जो होते थे मरने वाले, कि उसके जायदाद में कोई हिस्सा नहीं था, सिर्फ बड़े बेटे को मिलता था जो जंग के काबिल है। इस्लाम ने तदरीजन इस हुक्म को मना किया कि वसीयत कर दो। आज नहीं कर सकते वसीयत, ये बाद में बताऊंगी, अभी नहीं। बस इस आयत में इतना बता दिया कि मौत के वक्त में जो वसीयत की जाए वो अदल और इंसाफ वाली होनी चाहिए। आयत 181 को देखिएगा, फमम बदलहू, बस जिसने इस वसीयत को बदल दिया, हु के लिख लीजिए आगे, वसीया वसीयत की तरफ इशारा है, कि जो इस वसीयत को बदल दे, बाद अमा समिया हो, इसके बाद कि उन्होंने इसको सुना, फैन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीन युबद्दिलूनहु, बस इसका गुनाह उन लोगों के सर पे है जो इसको बदल दे। इन्नल्लाह समीउन अलीम, वो मरने वाला तो मर गया वसीयत करके, लोगों को नहीं पता उसने क्या की, लेकिन अगर तुमने वसीयत में कोई तब्दीलियां कर दी तो अल्लाह को खूब अच्छी तरह पता है कि तुम क्या कर रहे हो। क्या दो बातें इस हिस्से में समझ आई, कि मरने वाला अगर गलत वसीयत कर जाए, नंबर एक किसी का हक मार दे, दूसरी बात है किसी गुनाह की वसीयत कर दे, कोई कहता है मेरे माल से एक शराब खाना खुला दो, कोई कहता है मेरे माल से चोरों को कोई एक गैंग बना दो, कोई भी मिसाल दी है, अब उस वसीयत को बदलना पड़ेगा। ठीक है, गलत वसीयत कर दे तो ठीक कर दो, इसी का जिक्र अगले हिस्से में, इसको पढ़े तो ये पूरा मजमून इकट्ठा हमारे सामने आ जाएगा। फमन खाफ अमिम मोसे, बस जो कोई डरे वसीयत करने वाले की तरफ से, मोसिन वसी वसीयत से, वसीयत करने वाला किस चीज से डरे, जनफन झुकाओ, यानी सारा माल किसी एक को ही दे देता है, या किसी वारिस को महरूम कर देता है, या वारिस को और भी वसीयत से हिस्सा देना चाहता है, कुछ भी, यानी गलत वसीयत करे, औ इस्मन, या गुनाह की वसीयत कर दे जो मैंने अभी मिसाल दी, तो क्या करो, फसलह बैनहुम, तो उनकी इसलाह कर दो, तो क्या होगा, फला इस्मा अलैहि, फिर इस पे तुम्हें कोई गुनाह नहीं है। इन अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। चलिए अब अपने लफ्जों में बताती हूँ। पहली बात यह है कि वसीयत के बारे में ये हुक्म के माँ बाप और रिश्तेदारों के लिए वसीयत करो, ये हुक्म अब नहीं है, क्योंकि हदीस में आता है कि अल्लाह ने हर साहिब हक को उसके हक दिला दिए। अब क्या हुक्म है, अब पांचवें पारे तक आप कहाँ सब्र करेंगे, सब्र तो होता ही नहीं हमसे, तो बता देती हूँ। आज मेरे पास अगर 100 पाउंड है, मिसाल है इस लिफाफे में 100 पाउंड हैं, ये मेरे हैं, इन पाउंड्स को मैं कहाँ खर्च करूँ, किसको दूँ, खुद खर्च करूँ, अल्लाह के रास्ते में दूँ, अपने एक बच्चे को दे दूँ, दूसरे को, बेटों को ही सिर्फ दे दूँ, बेटियों को दूँ, कुछ भी कर दूँ, ये मेरे हैं, ये मेरी मर्जी है। गुनाह पे करूँगी तो गुनाह होगा, दो बेटे हैं, एक बेटे को दूंगी, दूसरे को नहीं दूंगी तो जवाब दे, ये दूसरा बेटा कल क्यामत के दिन मुझे पूछ सकता है। ठीक है, समझ आ गई। अब ये 100 पाउंड मैंने संभाले हुए थे कि मेरे कहीं बुढ़ापे में काम आएंगे, दिस एंड दैट, और इससे पहले मेरी मौत का वक्त आ गया। अब ये 100 पाउंड मेरे नहीं रहे, इसमें से स्टिल कितने हैं मेरे, 33 रुपये 33 पैसे, 33.30, यानी मरने के बाद मेरा अपना मेरे माल में से 1/3 रह जाएगा। अब मुझे पता है कि मेरे पास पहले 100 तो क्या कहेंगे, 1000 पाउंड है, मिसाल है, मैंने रखे हुए, काम आ रहे हैं मेरे पास है, चल रहे हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद ये पैसे किसी को मैं दूँ, तो मैं सिर्फ इसमें से 333.33 दे सकती हूँ। नंबर एक, समझ आ गई, जीते जीते 1000 मेरा, मरने के बाद सिर्फ 333 मेरे हैं। नंबर एक शर्त, समझ आ गई ये बात? ठीक है, पहली शर्त क्या कि 1/3 ही है। दूसरी सूरत चलिए, अब ये 333 मैं किसको दूँ? मरने के बाद लिखती हूँ किसके नाम पे? मैं किसी वारिस को नहीं दे सकती कि मेरे बेटे हैं उनको बाकी पैसों में जो मिलने हैं उसके अलावा ये मेरे एक बेटे को 333 भी दे दे। आई कैंट, मैं अपने मार बाप को नहीं दे सकती क्योंकि उनको मेरे विरसे में 666 जो बच रहे हैं ना उसमें खुद ब खुद मिल रहा है। मेरी माँ को भी 1/6 मिलेगा, मेरे बाप को भी मिलेगा, फिर मेरे शौहर को भी 1/8 जो 1/4 मिल जाएगा, बाकी सारा बच्चों में 2:1 की रेशियो से खत्म होगा। ये है टोटल इस्लामी विरासत जो हम पढ़ेंगे, अभी घबराए नहीं। ठीक है, अब इसमें से मैं कुछ नहीं कह के मरती, किसी को कुछ नहीं कहती, तो ये 333 भी मेरे वारसों का है। ये बात है सारी, बात वाजे। मरने के बाद आपके अपने माल में से 1/3 रह जाता है, उसको देने की दो शर्तें हैं। नंबर एक, वारिस को नहीं दे सकते। दूसरी सूरह यह कि गुनाह में नहीं दे सकते। और समझ नहीं आती तो फिर वेट करें पांचवें पारे का। ठीक है, बचाए ना दुनिया में ही दे दें, जिसको जो देना लेना इधर ही दे दें, और गलत वसीयत कर दें। मैं कहती हूँ ये 333 रुपये लें और इससे जाके नाइट क्लब खुलवा दें, तो आपको पूरा हक पहुँचता है कि आप उसको बदल दें। किसको दें? क्या जो 333 है मैं दूँ? ये अच्छा सवाल है कि मेरे पास है, मुझे पता है मेरे माल की। एक लफ्ज़ है विरासत, बहुत सारे लोग विरासत और वसीयत का फ़र्क नहीं समझते, इसलिए ये क्वेश्चन है। विरासत तो अल्लाह ने बांट दी है, वो तो उस पर तो अभी नो क्वेश्चन, वो पांचवें पारे में पढ़ेंगे। वसीयत के हुक्म में ये तदरीजी आयत है, इंटरफेज है, अभी आगे जाके आप पढ़ेंगे पांचवें पारे में फिर ये आयत आएगी थोड़े मफहूम से। अब मैंने 333 देने हैं तो मैं किसको दे सकती हूँ? नंबर एक, मैं अल्लाह के रास्ते में देना चाहती हूँ, किसी मस्जिद को देना चाहती हूँ, किसी मदरसे को, किसी स्कूल को, मैं अपनी फूफो को देना चाहती हूँ, मैं अपनी खाला को देना चाहती हूँ जिनको मेरी विरासत से नहीं मिलना था। अब कहता है कि मरने के बाद आपके माल में से डायरेक्ट हिस्सा आपके माँ बाप शौहर या बीवी दोनों में एक है, और उसके बाद बेटे और बेटियों को मिलता है, ओनली ये 6 हिस्सों में आपका सारा माल बटेगा। हाँ, बच्चे नहीं है तो फिर तो बहन भाइयों तक जाता है, अदरवाइज आपके माल में बहन भाइयों को लग नहीं मिलता। मुझे लगता है मेरी कोई बहन बीमार है, मेरी बहन गरीब है, भाई है, खाला का बेटा, फूफो का, कोई मिलने जुलने में मैं इन 333 में से नसीहत कर सकती हूँ कि 100 इनको दे दें, 200 उनको दे दें। ला वसीयत ली वारिस, दो लफ्ज है, कोई वसीयत नहीं है वारिस के लिए। ठीक है, क्योंकि वारिसों को मिल रहा है पहले से, तो इसको अल्लाह के रास्ते में दूं, किसी गरीब रिश्तेदार को दे दूं, दोस्त को दे दूं, साथी को दे दूं, नो प्रॉब्लम, मैं दे सकती हूँ। लेकिन जिनको अल्लाह खुद दे रहा है उनमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो बहरहाल यहाँ से देखिए कि दीन इस्लाम कैसा है। ये इस वक्त हमने ये आखिरी दो हुक्म कौन से सुने? कोई आप में से, दरख्त में से बताएं कौन सा हिस्सा था? ब्रांचेस, मामलात हैं ये। ठीक है, शुरू में बात इबादत की हुई, तो आप देखिए कि आपको पूरे इस्लाम में यही चीज़ देखेगी कि कहीं बंदों के मुतल्लिक का हुक्म सुनते हैं, कभी अल्लाह ताला के। ये नहीं कहा कि बैठ के सिर्फ नमाजें पढ़ते रहो, मस्जिदों में बैठे रहो, ये भी नहीं दीन, और कहीं खुली जगहों पे चले जाओ, और ये भी दीन नहीं कि सारा वक्त लोगों के साथ ही हक अदा करते रहो तो अल्लाह को ना दो। तो अल्लाह और बंदों के हकूक का बेहतरीन कॉम्बिनेशन इस्लाम है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें इसकी कदर की तौफीक दे और अमल की तौफीक दे। कमेंट्स लिखिए, आप नहीं लिखेंगे आपका नुकसान होगा, सच बता रही हूँ, आपके जहन नहीं खुलेंगे। मैं नहीं पढ़ती इधर, आपको नहीं अच्छे लगते ना अपने कमेंट्स में, नहीं पढ़ती, लेकिन आप लिख के दें ताकि कोई अच्छा हो तो कम अज़ कम उसको लिखा जा सके। जजाकल्ला खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم